लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहां तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स के जीवन एवं चटन नागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। चटन नागपुर की कलीसिया ने अपने विकास की राह पर कई प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है। उसे जमींदारों एवं सरकारी अधिकारियों की क्रूरता, अपमान, हिंसा, अन्याय और पीड़ा को सहन करना पड़ा है। मिशनरियों ने अपने खून पसीने से इस कलीसिया को सींचा और बढ़ाया है। चटन नागपुर में कैथोलिक कलीसिया के प्रसार हेतु फादर लेबन्स को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और लोगों के बीच ख्रिस्त की ज्योति जलाते हुए पीड़ित एवं उपेक्षित लोगों को जीने का रास्ता दिखलाया। आज हमारा दायित्व है कि हम फादर लेबन्स द्वारा जलाई गई ज्योति को प्रज्वलित रखें। पिछले कार्यक्रम में हमने सरकारी अधिकारियों के अन्यायपूर्ण बर्ताव और मिशनरियों द्वारा मिशन की रक्षा के प्रयास पर प्रकाश डाला था। आज के कार्यक्रम में हम मिशनरियों को धीरज पूर्वक कठिनाइयों का सामना करते हुए देखेंगे। कलकत्ता के महाधर्माध्यक्ष पॉल गोथर्स, जिनके अध्ययन चटन नागपुर का पूरा क्षेत्र आता था, फादर लेबन्स ने उन्हें बारंबार यह बताने की कोशिश की कि उप कमिश्नर मिस्टर रेनी, जिसने मिशन की जांच की थी और अपना निर्णय सुनाया था, मिशन को किस तरह क्षति पहुंचा रहे थे। फादर लेबन्स ने गहराई से महसूस किया कि मिशन कार्य की रक्षा के लिए मिस्टर रेनी के खिलाफ कुछ कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए। उन्हें लगा कि यदि रेनी की इच्छा चलती रही तो मिशन को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा और यदि न्याय मिला तो चटन नागपुर को सांसारिकता, पलायन और गुलामी से बचाया जा सकता है। महाधर्माध्यक्ष को पत्र लिखते हुए फादर लेबन्स ने कहा, हमारे कार्य का क्या होगा यदि हम न्यायाधीश को जवाब नहीं दे पाएंगे? क्या मिस्टर रेनी को अपने अधिकारियों के सामने निरुत्तर नहीं किया जा सकता, जिसके लिए उन्होंने हमारे ऊपर दोष लगाया है? इस तरह महाधर्माध्यक्ष को बार बार पत्र लिखकर फादर लेबन्स ने उनके समर्थन का आग्रह किया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि इस विकट परिस्थिति में भी फादर लेबन्स के व्यवहार में कहीं नहीं दिखाई पड़ता कि वे थके या निराश हुए। उन्होंने बड़े धीरज से न्याय का इंतजार किया। फादर लेबन्स को आशा की एक छोटी किरण तब दिखाई दी जब वकीलों ने उन्हें अदालत में केस दर्ज करने की सलाह दी। उन्होंने बतलाया कि उप कमिश्नर कोर्ट का सर्वोच्च अधिकारी नहीं होता और उसके द्वारा निर्णय सुनाए जाने के बाद भी रांची के सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता के उच्च न्यायालय में केस दर्ज किया जा सकता है। फादर लेबन्स ने वकीलों की इस राय को महाधर्माध्यक्ष को बतलाया तथा आग्रह किया कि वे कलकत्ता उच्च न्यायालय में केस दर्ज करें। उन्हें डर था कि रांची का कोर्ट निष्पक्ष नहीं होगा और यह भी संभव था कि मिस्टर रेनी ही न्यायाधीश बनकर केस को अपने हाथ में लेते और वकील कुछ नहीं कर पाते। फादर लेबन्स ने आगे कहा कि सारे रिपोर्ट कलकत्ता भेजे जाएंगे और यदि कलकत्ता में केस दर्ज नहीं किया जा सकता तो कलकत्ता के वकील मिस्टर मनमोहन घोष को हायर किया जाए। मिस्टर मनमोहन घोष एक साहसी वकील थे जो ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों की अवैधता पर निडर होकर सवाल करते थे। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में महाधर्माध्यक्ष ने निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने अपील करने की अनुमति दी। कलकत्ता में उनके वकील ने मुकदमा लिया जिसमें 55 ख्रिस्तियों को बड़ी अनियमितता के साथ जेल की सजा दी गई थी। प्रभावशाली लोगों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया था। दंड भी समानुपातिक नहीं थे। इसके लिए भी एक अपील दर्ज की गई। महाधर्माध्यक्ष पॉल अब संकट में पड़े मिशन को अपना पूरा समर्थन देने लगे। छोटानागपुर की स्थिति से पूरी तरह अवगत उन्होंने भारत में सबसे बड़े अधिकारी वायसराय के सामने खुद मामले को रखा तथा छोटानागपुर में ख्रिस्तियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की शिकायत की। उन्होंने बंगाल के लेफ्टिनेंट स्टेवर्ट बेले को भी एक पत्र लिखा और उनसे मुलाकात की। परिणाम तो छोटानागपुर के कमिश्नर मिस्टर ग्रीमले को कलकत्ता बुलाया गया। महाधर्माध्यक्ष ने विवाद के संबंध में उनसे भी बातचीत की। महाधर्माध्यक्ष ने उन्हें वे कागजात दिखलाए जिनको उन्होंने फादर लेबन्स एवं अन्य मिशनरियों से प्राप्त की थी। मुलाकात के अंत में मिस्टर ग्रीमले महाधर्माध्यक्ष की बातों से सहमत दिखाई दिए। जिस सम्मान के साथ सरकार महाधर्माध्यक्ष पॉल गोथल्स से पेश आई उससे मिशन की अच्छाई की उम्मीद बढ़ी। इस बीच महाधर्माध्यक्ष अपने मिशनरियों एवं ख्रिस्तियों तथा उनकी मांगों के प्रति अपना समर्थन देना और छोटानागपुर के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करना चाहते थे। अतः उन्होंने रांची में प्रेरित यात्रा करने का निश्चय किया। महाधर्माध्यक्ष ने बंगाल की सरकार को इसकी सूचना दी और सरकार ने उनका सकारात्मक जवाब देते हुए छोटानागपुर के कमिश्नर को आदेश दिया कि यात्रा में महाधर्माध्यक्ष को हर संभव मदद दी जाए। इस तरह हम देखते हैं कि मिशनरियों ने कठिन समय में धीरज एवं सोच समझकर काम किया जिसका उन्हें अच्छा परिणाम देखने को मिला। हम भी कठिनाइयों में न घबराएं बल्कि धीरज एवं विवेक का सहारा लें। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स के जीवन एवं छोटानागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
नेक मन दे दे खुदा, नेक मन दे दे खुदा, राह रहम की समझदारियां, राह रहम की समझदारियां, नजरों से हटा दे पर्दा, निहारू तेरी मेहरबानियां, मेहरबानियां, नेक मन दे दे खुदा, नेक मन दे दे खुदा।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक जब जागो तब सवेरा। लेखिका है सिंड्रेला जोसेफ। श्रोताओं, अगर हम वर्तमान से महज 20-30 साल पीछे जाकर विशेष रूप से संयुक्त परिवार के प्रचलन के समय को देखेंगे तो पता चलेगा कि उस समय संयुक्त परिवार के प्रचलन के पीछे अर्थव्यवस्था का कृषि पर आधारित होना होता था। संयुक्त परिवार में बच्चों की देखरेख कभी दादा दादी, चाचा चाची, देवर देवरानी या ननद और अन्यों द्वारा की जाती थी, जिस कारण उनको अकेलेपन से कभी जूझना नहीं पड़ता। संयुक्त परिवार में बच्चों को बड़ों का प्यार, दुलार और सपोर्ट मिलता है। अगर कोई समस्या आ भी जाए तो परिवार के अन्य सदस्य बच्चों की समस्या का समाधान चुटकी में निकाल लेते हैं। ऐसे माहौल में पले बड़े बच्चे बड़े होकर ज्यादा परिपक्व, रिश्ता निभाने वाले, सबके साथ रहने वाले और समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। मगर फिर समय बदला और लोग कामकाज रोजगार की तलाश में शहर प्रांत देश और विदेश जाने लगे। फलस्वरूप परिवार टूटा और एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ने लगा। आजकल माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि बच्चों की देखरेख के लिए घर में कोई उपलब्ध नहीं होता या काम करने वाली आया के भरोसे घर छोड़ दिया जाता है। आजकल एकल परिवारों के दौर ने बच्चों को अकेलेपन का शिकार बना दिया है। उस पर परवरिश की कमी की वजह से बच्चे अनैतिक कार्यों में लिप्त होते चले जाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाने का प्रयास तो कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा और अच्छे संस्कार देने में पीछे रह जाते हैं। कारण होता है उनका अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत न कर पाना। माता पिता दोनों ही कामकाजी होने के कारण अपने बच्चों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। बच्चे व्यवहारिक शिक्षा और अच्छे संस्कार सबसे अधिक अपने माता पिता से ही सीखते हैं। अतः ऑफिस से आने के बाद माता पिता दोनों को अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए और छुट्टी के दिन भी बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं सिंड्रेला जोसेफ की लिखी नाटिका जब जागो तब सवेरा।
मम्मी मम्मी मम्मी, ओफो क्या मालूम ये मेरी बातें क्यों नहीं सुनती। मम्मी, ओफो क्या बात है नेहा, इस तरह शोर मचाकर क्यों सारा घर सुबह सुबह सर पर उठा रखा है, क्या बात है। अच्छा मैं सर पर घर उठा रही हूँ, आपको ही मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है।
नेहा देख रही हूँ कि आजकल तुम जरूरत से ज्यादा ही बोलने लगी हो।
तो बोलू क्यों नहीं, मेरी परवाह किसे रहती है।
नेहा चलो अब जल्दी नाश्ता करो और स्कूल की तैयारी करो, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है।
तो क्या मैंने आपका हाथ पकड़ा है जो मेरे कारण देर हो जाएगी। हे भगवान, पापा का भी पता नहीं कब लौटेंगे।
पापा आज दोपहर तक आ जाएंगे। क्यों, क्या मेरी शिकायत करनी है तुम्हें।
शिकायत करनी है, आप दोनों मेरी सुनते कब हो, फिर शिकायत करने से फायदा क्या होगा।
देखो नेहा आज तुम्हारे पापा आ रहे हैं, पापा को लौट आने दो, फिर हम खुलकर तुम्हारी इस समस्या पर विचार कर लेंगे, क्यों, ठीक है ना।
अब ये तो आप और पापा ही जाने, मैं तो चली, बाय बाय।
नेहा
बाय।
अरे ये लड़की भी ना, अरे नाश्ता तो करती जाओ। ओफो लंच बॉक्स भी यहीं छोड़ दिया इस लड़की का तो कोई पता ही नहीं क्या होगा इसका। अभी 10वीं में ही है लेकिन उद्दंडता इतनी कि हम तो परेशान हो चुके हैं। अरे अभी कौन आया है, चलो देखती हूँ। अरे आप इतनी जल्दी, आप तो दोपहर तक आने वाले थे ना।
क्यों क्या बात है शीला जी, हमारे जल्दी आने से कोई तकलीफ हो रही है क्या आपको।
नहीं नहीं कुछ नहीं जी, आज सुबह से ही थोड़ा दिमाग खराब है।
क्यों,
खैर छोड़ो, मैं ऑफिस की तैयारी कर रही थी।
अच्छा अच्छा तो ऐसा है, हमारी लाडली ने ही दिमाग खराब किया होगा आपका। स्कूल चली गई क्या वो।
हाँ सुमित, चलो तुम जल्दी से नहा धो लो, तब तक मैं सारे काम भी फटाफट निपटा लेती हूँ।
हाँ ठीक है शीला, क्या तुम ऑफिस से छुट्टी ले सकती हो आज। अब ऐसे ही आज कुछ बातचीत करने और साथ में समय बिताने का मूड है।
वैसे भी आज मेरा भी ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, तब तक मैं भी फोन करके देखती हूँ।
अब शीला शीला,
ओहो अब तुम जाओ तो सही।
ठीक है ठीक है, लेकिन जोर लगाकर कोशिश करना।
हेलो हेलो कामिनी, हाँ मैं शीला बोल रही हूँ। सुनो तो देखो, आज घर में ना थोड़ा सा काम है, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती। क्या, हाँ अभी आए हैं, तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगी। हाँ 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 मैं रखती हूँ, बाय।
शीला कह दिया, चलो भाई शीला अब नाश्ता लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ अब शीला ये क्या, नेहा आज फिर टिफिन भूल गई यहाँ।
सुमित तुम तो अपनी बेटी को जानते ही हो, कितनी जिद्दी है, आज नाश्ता भी नहीं किया। वैसे टेस्ट के कारण आज उसकी जल्दी ही छुट्टी हो जाएगी, 10 बजे तक आ जाएगी वो।
अच्छा, फिर तो आज हम तीनों एक साथ समय बिताएंगे, और वैसे भी कितना समय हो जाता है ना, अपनी बच्ची के लिए मैं वक्त ही नहीं निकाल पाता।
हाँ सुमित, आज मुझे उसकी उद्दंडता देखकर यही लगा कि शायद हमसे कहीं गलती हो रही है, हम इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी बच्ची पर पूरा ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। क्या ये बात तुम नहीं सोचते हो? हाँ सुमित, आज मुझे उसकी उद्दंडता देखकर और जो सुबह सुबह आज उसने मेरे साथ झगड़ा किया, बाप रे, वो देख के तो मैं उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो गई हूँ कि वो आगे जाकर क्या करेगी, कैसे अपने आप को संभालेगी। मुझे लगता है कि हमसे कहीं गलती हो रही है, जो हम दोनों हमेशा अपने काम के अंदर लगे रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद अपनी बच्ची पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और मेरे साथ साथ तुम्हें भी उसको ध्यान देने की आवश्यकता है।
ठीक कह रही हो शीला, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और फिर वैसे भी मुझसे ज्यादा वक्त तो वो तुम्हारे साथ ही बिताती है, क्योंकि मैं तो हमेशा टूर पर ही रहता हूँ। शीला, मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मेरी जिंदगी टूर बन के रह गई है, अपने घर के लिए तो बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं पा रहा हूँ मैं, न अपनी बच्ची के लिए न तुम्हारे लिए। शीला, अब मुझे सोचना चाहिए थोड़ा इस बारे में।
अच्छा हुआ सुमित जो आज तुम जल्दी आ गए, कम से कम हमें अपने परिवार के बारे में सोचने का मौका तो मिला, और मैं तो यही सोचती हूँ कि अब तुम ज्यादा से ज्यादा समय बच्ची के साथ बिताओ।
ठीक कह रही हो शीला तुम, और फिर बच्चे अकेले रहकर ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, शायद यही वजह हो कि नेहा तुमसे ठीक से बर्ताव नहीं कर पा रही हो।
हाँ।
और फिर क्यों ना अब हम उसके बारे में थोड़ा सोचें, अब शीला उसके लिए थोड़ा सा वक्त तो निकालना ही होगा। अब देखो ना, केवल नौकरी और कमाना ही तो हमारे लिए काफी नहीं है ना, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हमारे बच्चों के लिए भी तो हैं।
तुम ठीक कह रहे हो सुमित, मैं भी यही सोच रही थी, पर हमें समय समय पर नेहा के लिए वक्त निकालना ही होगा। अरे दरवाजे पर कौन है, मैं देखती हूँ, शायद से नेहा ही होगी।
शीला तुम रुको, मैं देखता हूँ। आज तुम ना उसे घर में रहकर सरप्राइज दो, दोनों को देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी।
हाँ।
नेहा, वाह वाह वाह, मेरी बिटिया रानी, कैसा रहा एग्जाम?
पापा, आप तो दोपहर को आने वाले थे ना?
हाँ, तो दोपहर को आने वाला था तो जल्दी नहीं आ सकता मैं। हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वापस चला जाता हूँ, दोनों माँ बेटी को प्रॉब्लम है। वो भी तुम्हारी मम्मी भी कह रही थी कि जल्दी आ गया हूँ, तुम भी कह रही हो कि जल्दी आ गया हूँ।
नहीं पापा,
अब तुम्हारे लिए तो जल्दी आया हूँ मैं।
मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है।
आश्चर्य तो होगा ही ना, इतने दिनों बाद जो मुझे देखोगी घर में तो।
मम्मी आप भी, वाओ, मुझे कितनी खुशी हो रही है आप दोनों एक साथ।
हाँ बेटा, तुम्हें खुश देखने के लिए तो हम दोनों तरस गए थे। वाकई सुमित, हम गलती कर रहे थे, हमारे ही कारण हमारी बच्ची हमसे दूर जा रही थी, और अब देखो कितनी खुश है।
हाँ खैर, अब कोई बात नहीं शीला, जब जागे तभी सवेरा, तो फिर जाग गए ना हम। हाँ बेटियाँ, अब तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा मैं। चलो अब जल्दी से नाश्ता करते हैं, और फिर नाश्ता करने के बाद हम सब एक लॉन्ग वॉक के लिए जाएंगे।
जब जागो तब सवेरा, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे नलिनी भंडारी, राजकुमार टुडेजा और मानिक हरने। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।